ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्तारम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसां। जिनेन्द्र भगवान ने बताए हुए प्रयोजनभूत सात तत्वों की यहां हम चर्चा कर रहे हैं। हमने यहाँ सात तत्वों के नाम देखे हैं और उनका स्वरूप, उनका लक्षण भी देख लिया है। अब उसमें जो हेय, गेय और उपादेय तत्व कौन से है, उसकी चर्चा चल रही थी। हमने देखा है कि मैं स्वयं जीव तत्व हूँ, तो वो कैसा तत्व है? तो वो है आश्रय करने योग्य, उसको उपादेय कहा। उपादेय में भी हमने तीन प्रकार के उपादेय कहे थे। एक है प्रकट करने योग्य उपादेय, उसमें अंशतः प्रकट करने योग्य और पूर्णतः प्रकट करने योग्य। अंशतः प्रकट करने योग्य है संवर और निर्जरा, और पूर्ण प्रकट करने योग्य है मोक्ष तत्व। और आश्रय करने योग्य उपादेय जो है वो मैं स्वयं जीव तत्व है। अब रही बात अजीव तत्व की, तो अजीव तत्व जो है, अजीव तत्व है वो गेय तत्व है। यह मैं नहीं हूं पर है, ऐसे जानने योग्य है। और आश्रय और बंध तत्व है वो हेय तत्व है। ये जो सारे हेय, गेय और उपादेय वो श्रद्धान में लेना है। तो ज्ञान में क्या करना, तो ज्ञान तो सबको जानेगा। ज्ञान आश्रय को भी जानेगा, बंध को भी जानेगा, समनिजरा मोक्ष को भी जानेगा, अपने को भी जानेगा, पर को भी जानेगा। तो ये सारे ही ज्ञान के विषय है, परंतु उनको किस रूप से श्रद्धान लेना है, किस रूप से उसकी प्रतीति करना, तो उसमें ये प्रतीति में हेय गेय उपादेय हो जाते हैं। उनके लक्षण जान लेना, उनको हेय गेय कहने से उपादेय नहीं होते। तो हम उनको किस रूप वो भाषित होते हैं, जैसे हमने देखा है कि भगवान को हमने उपादेय माना, भगवान की भक्ति को भी उपादेय माना, चूंकि वो आश्रय बंध तत्व होने से हेय तत्व था। तो जब हम हेय कहते तो श्रद्धान में लेने था, जब हेय कह दिया तो कोई जीव झगड़ने आए कि जीव स्वच्छंदी हो जाएंगे, आप हेय क्यों कह रहे हो। और कोई ऐसे जीव मिले कि जो उन्होंने हेय समझकर छोड़ ही दिया, अशुभ में लगे। यानी दोनों नहीं, ये मान्यता की बात है, मान्यता सुधारने के बदले श्रद्धा यानी आचरण में से छोड़ने की बात उठाई, और फिर उस पॉइंट पर झगड़ा चलने लगा। तो ये तो मार्ग ऐसा है कि अपना कल्याण करने का मार्ग है, ये स्वरूप समझकर अपना कल्याण होता है। परंतु इस जीव को क्या है, झगड़ा प्रिय है ना, तो इसको भी वाद का विषय मुद्दा बना दिया उसने। तो हम यहां देख रहे हैं, ये पत्रांक 25 हम देख रहे थे कि इसमें हमने दो बातें देखी थी, एक तो ध्रुव अंश और एक पर्याय अंश। तो पर्याय अपने में होती हुए भी उन पर्यायों को गौण करके हम ध्रुव अंश का लक्ष्य करेंगे, तो जो पर्याय जो अशुद्ध उत्पन्न हो रही थी वो स्वभाव अंश रूप, स्वभाव पर्याय रूप परिणमन अपने आप होगा। क्या कहा, पर्याय में अशुद्धता है, मोहराग द्वेष है। तो मोह राग द्वेष ये तो चारित्र और श्रद्धा में है, परंतु ज्ञान गुण वहां है ना, ज्ञान की भी पर्याय चल रही है। तो मिथ्यात्व अवस्था में भी जो ज्ञान है वो तो जानने का कार्य कर रहा है, और उसी ज्ञान में अपना स्वरूप जानने की ताकत है मिथ्या ज्ञान, परंतु ये सारा निर्णय उसी में होने वाला है। मिथ्या क्यों कह रहे उसको, क्योंकि अभी श्रद्धा में विपरीतता है। तो ज्ञान में हमने आगम के द्वारा पहले में पहले तत्वों का स्वरूप हम समझेंगे, और फिर उसकी श्रद्धा सही कैसी है उसका भी स्वरूप जानेंगे, तब क्या करना है? तो पर्याय उनको गौण करके अपने ध्रुव अंश का लक्ष्य करना है। वो करने से क्या होगा? पर्याय में उत्पन्न होने वाले जो राग द्वेष है वो अपने आप कम होंगे, स्वभाव जैसी पर्याय उत्पन्न होगी, उसको कहेंगे ये राग द्वेष मिट जाएंगे और वितरागता उत्पन्न होगी। इसकी बात तो हमने सुबह भी देखी थी कि ये मैं यानी जो द्रव्य अंश है, ध्रुव अंश है, वह मैं हूं और उसका हमें आश्रय लेने का अर्थ होता है उसी को जानते रहना। कैसा जानना? यह मैं हूं ऐसा जानना, यानी तब हम कहेंगे ये जीव तत्व का आश्रय लिया।
यहाँ जो न पलट न रो इसलिए अपरिणाम है,
हाँ
वही परम परिणामी,
उसी को परम परिणाम, क्योंकि जो है ना द्रव्य कैसा है, कायम रहते हुए कायम पलटने वाला, जिसको वो कायम रहने वाला उसको हम सामान्य कहेंगे और जो पलटने वाला अंश है वो विशेष कहेंगे। क्षेत्र दोनों का एक ही है, ऐसा नहीं कि एक बाजू सामान्य और एक बाजू विशेष है। जो द्रव्य है उसी में उसकी पर्याय है, जो जीव द्रव्य है उसकी पर्याय उसी में है, वो उसी का अंग है, फिर भी हम उसको गौण कर सकते हैं। अपने ज्ञान में ऐसी कैपेसिटी है कि हम जो सामान्य अंश को मुख्य करके जानेंगे तो पर्याय अंश गौण हो जाता है, विशेष अंश गौण हो जाता है। पहले तो पहले नक्की करेंगे कि पर्याय है वहां पर, ज्ञान में तो उनको पहले जानेंगे। इसीलिए यहां सात तत्वों की बात क्यों उठाई कि जीव भी है, अजीव भी है और पर्याय भी है। यदि उनको हम स्वीकार ही नहीं करेंगे तो अन्य मति जैसी मिथ्या मान्यता एकांतवाद हो जाएगा। इसलिए सात तत्वों को जैसा है वैसा पहले में जानेंगे जानेंगे। अब जानकर क्या करना है? तो पर्याय अंश को गौण करके सामान्य त्रिकाली जो अंश है जिसको हम जीव तत्व कहते हैं उसको जानते रहना है। उसको जानने से पर्याय गौण हो जाती है। जानने वाली तो पर्याय ही है, परंतु ये मैं जानने वाली हूं, ये मैं द्रव्य, ऐसा वहां अभी भेद अभी नहीं करना है। द्रव्य कैसा है समझने के लिए बहुत भेद करके समझा, इसमें अनंत गुण है, इसके असंख्यात प्रदेश है। अब जब आत्मा का अनुभव का जब काल आया है, उस काल में क्या करना है? पहले जान लिया ना द्रव्य कैसा है, हमने ध्रुव अंश को भी जाना, पर्याय अंश को भी जाना, अब क्या करना? अब अभेद, ऐसे निर्विकल्प का अर्थ होता है अभेद, मैं चेतन हूं। अभी उसमें पर्याय है कि नहीं ये चर्चा अभी छोड़ दो, अभी तो हो गई सब चर्चा। द्रव्य कैसा है समझ में आया है, अभी काल है अपने आत्मानुभव करने का। तो यहां कहते हैं कि वो पर्याय गौण हो जाती, अपने अभेद रूप से अपने को स्वीकार करने पर, सामान्य रूप से स्वीकार करने उसमें है सब पर्याय, गर्भित है, उसका लक्ष्य नहीं है। तो हम कहेंगे उसको हमने उपादेय किया, उसको जानेंगे तो उपादेय हुआ। उपादेय कहने से उपादेय नहीं होता, हेय कहने से हेय नहीं होता। तो जब हम सामान्य को जानते रहेंगे तो पर्याय उजिल होती है, गौण हो जाती है, दुर्लक्षित होती है, तब हम कहेंगे उसको हमने हेय किया। नहीं तो हम कहने के लिए भाषा तो हमने सुधर दी, भाषा में तो कह दिया, किसी ने पूछा कैसे है तो हमने हेय कह दिया, वो कहने में है या नहीं होता, श्रद्धा में और उस रूप परिणाम में होगा। कि यदि हम जीव तत्व का आश्रय लेते हैं, उसको जानते रहते हैं, तो हम कहेंगे इसने आश्रव को हेय किया और जीव को उपादेय किया। कहने से कुछ नहीं होगा, ख्याल है ना, वो तो शब्द ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ जो ये आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष, ये पर्यायों के भेद क्यों बताए? क्योंकि उसको जानने में जीव अगर भूल करता है, पर्याय भी जैसी है वैसी जाननी चाहिए। जानने का देखो ज्ञान का कार्य है जानना, जैसे का वैसा जानेगा तो ज्ञान सही होगा। ज्ञान सम्यक कब होगा? जब श्रद्धा सम्यक होगी। पर सम्यक श्रद्धा होने के पहले ज्ञान सही होगा। सही होगा के अर्थ क्या है? जैसे आगम में बताया वैसे पहले ज्ञान की में नक्की करेंगे हम, तत्व विचार तत्व निर्णय करेंगे ना। जैसे आश्रव है, बंध है, संवर निजरा मोक्ष, इनका स्वरूप अगर हम नहीं पहचानेंगे, जैसे मोक्ष में हम सुख मानेंगे, इंद्रिय सुख मानेंगे और संवर निर्जरा को दुख रूप मानेंगे, तो ये हमारा ज्ञान भी सही नहीं होगा। देखो, हमें मिरर खरीदना है तो कैसे हम खरीदते हैं? जैसी वस्तु है वैसी अगर रिफ्लेक्ट होती है तो हम सही कहेंगे। ये वस्तु तो है गोल और उसमें ऐसा लंबा, अगर हम देखते हैं ना उसमें ये कर्वेचर वाले मिरर होते तो क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा चेहरा दिखता है। ये वस्तु जो है गोल और उसमें दिखाएगी लंबा गोल या कोई ऐसी चपटी दिखेगी तो हम क्या कहेंगे, अरे ये बराबर नहीं है। तो ज्ञान वही सही होगा जैसे वस्तु स्वरूप है वैसा जानेगा तो ही। तो आत्मानुभव होने से पहले ये जरूरी है कि इन पर्याय तत्वों को भी जैसा है वैसा जाने, इसीलिए सातों ही तत्वों का निर्णय करने की जरूरत है। तब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। अभी सम्यक दर्शन के होने के पहले ये आगम में से इसको सही जानेगा। आगम का अर्थ होता है किसी ज्ञानी के उपदेश से जानेगा या ग्रंथों में से वो जानेगा। तो सर्वप्रथम क्या करना है कि मेरे से ये सारे तत्व भिन्न है और मैं भिन्न हूं, ऐसा लक्षण के द्वारा निश्चित करना है कि मैं कौन हूं, मैं जीव तत्व हूं। मेरा लक्षण क्या है, ज्ञाता दृष्टा है। ये अजीव क्या है, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं है। आश्रव क्या है, शुभाशुभ भाव आदि जो है वो सारे आश्रव तत्व है। इस तरह से हमें अपने से ये भिन्न है ये जानना है। जानने वाला मैं हूं और अपने में ही जो राग द्वेष उठ रहे है, मैं उस रूप नहीं हूं, इसको कहेंगे हमने जीव तत्व और आश्रव तत्व में भेद किया। पहले में श्रद्धा में कैसे लिया, उसको दुख रूप भाव है, अब अपने से वो भिन्न है ऐसा भी हमें निश्चित करना है। देखो, इन्हें हमारे से मेरे लक्षण भिन्न है और इन अन्य तत्वों के लक्षण भिन्न भिन्न है ऐसा जानना पड़ेगा। सब तत्वों में महान ऐसा मैं जीव तत्व हूं, इस तरह स्व की महानता भासित हुए बिना हमारी दृष्टि, उपयोग और ध्यान, दृष्टि का अर्थ होता है मैंपना स्थापित करना, उपयोग यानी ज्ञान, वो है दृष्टि। दृष्टि यानी दृष्टि का विषय यानी क्या, हमने मैं किसमें स्थापित किया उसको कहेंगे दृष्टि। उपयोग यानी ये ज्ञान की पर्याय और ध्यान यानी उसी को जानता रहना यानी वो चारित्र की पर्याय समझेंगे। स्व की ओर नहीं मुड़ सकता। हम कहते हैं ना उपयोग को अंदर ले जाओ, आत्मा में ले जाओ। कैसे ले जाओ, क्योंकि उपयोग वही चिपकता है या जाता है जिसकी महानता भासित होती है, जिसका आकर्षण है, जिसकी ओर हमें कुतूहल होता है उसी की ओर जाएगा। हमें अन्य गेयों की चकाचौंध बहुत अच्छी लगती है, उसकी महानता है, हम इसको जानो उसको जानो उसको जानो, ज्ञान उसी की ओर बहता है, उपयोग वही लगता है। जब अपनी महानता भासित होगी, अरे इन सबको जानने वाला तो मैं हूं और ऐसा एक नहीं, अनंत गुण मेरे में है, और केवल ज्ञान की जैसी अनंत पर्याय अनंत काल तक निकले तो भी मैं वैसा का वैसा ज्ञायक हूं, ऐसे अपनी महानता भासित होगी तो ही उपयोग अपनी ओर आएगा। यानी यहां तो सभी पर्यायों से मैं जीव तत्व महान हूं भासित होना चाहिए। देखो, यदि हमें अपने से सम्यक दर्शन की पर्याय महानता होगी तो क्या होगा, नहीं सर, बहुत अच्छा, यानी मुझे सम्यक दर्शन की पर्याय हुई कि नहीं हुई कि नहीं, यानी किसकी महानता हो रही है, सम्यक दर्शन की पर्याय की। मोक्ष पर्याय भी अपने से बड़ी मानेंगे अगर हम, अरे मोक्ष तो पर्याय है, अपने से उत्पन्न होने वाली है, वो मेरे से बड़ी नहीं है, क्योंकि ऐसी अनंत पर्याय अनंत काल तक चलती रहे तो भी मैं कभी खुटने वाला नहीं हूं। यानी जब मोक्ष की अधिकता भासित होती है, सम्यक दर्शन की अधिकता, किसने, अपने से वो अधिक है, अपने से कुछ बढ़कर है, तो हम कहां देखेंगे, अरे पर्याय प्रकट हुई कि नहीं हुई कि नहीं हुई कि नहीं, तो हमको कब होगी, कभी नहीं होगी। जैसे स्कूल में हम थे तो क्या बताते थे, वो एक चौड़ी या मुंह कोई चना लेना और वो पानी में जमीन में गाड़ देना तो उसका अंकुर फूटेगा, ऊपर उसका झाड़ आएगा छोटा। तो हम क्या करते थे, वो बो दिया अंदर, पानी डाला, पांच पांच मिनट में ओपन करके देखते ये अभी उग गया है कि नहीं उग गया कि। तो वो तो उगने वाला नहीं, वो तो ऐसे नष्ट होने वाला है। ऐसे हम क्या करते, ध्यान के नाम पर बैठे, समय दर्शन हुआ कि नहीं, कैसा होता होगा, क्या होता होगा। यानी हमें अपनी महानता नहीं है, वो सम्यक दर्शन की महानता है। बार बार हमें क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं, क्यों चिंता कर रहे हमें सम्यक दर्शन कब होगा। अरे वो पर्याय अपने पर्याय क्रम में निश्चित है कि नहीं, तो कैसे होगी, अपना लक्ष्य करने से होगी। और हम लक्ष्य किसका कर रहे हैं, सम्यक दर्शन रूपी पर्याय का। यानी संवर निर्जरा अपने से महान भाषित होती है, तो लक्ष्य तो उसका ही होगा। अभी तो है ही नहीं पर्याय में, फिर भी उसकी महानता हो रही है। तो अपना लक्ष्य करने से ये पर्याय उत्पन्न होने वाली है। यही कहते हैं, जब तक सम्यक दर्शन यानी संवर निर्जरा अथवा मोक्ष की स्व से अधिकता यानी महानता भाषित होगी, तब तक उपयोग स्व की ओर झुकेगा नहीं। ये तो ध्यान के नाम पर उपयोग यहां ले जाओ, वहां ले जाओ, वहां ले जाओ करते हैं, परंतु वो ले जाने से नहीं जाता है। वो सहज अपने आप को पकड़ता है जब अपनी महानता भाषित होती है। उपयोग स्व में लीन हुए बिना सम्यक दर्शन होगा नहीं, अर्थात सम्यक दर्शन की तरफ दृष्टि रखने से सम्यक दर्शन नहीं होगा, परंतु उन पर्यायों की तरफ से दृष्टि को हटाकर स्व की ओर दृष्टि केंद्रित करे तो सम्यक दर्शन होगा। पर्याय की विचार करते रहने से, उसकी तरफ देखने से सम्यक दर्शन नहीं होने वाला, क्योंकि जिस बात की हमें महानता भाषित होती है उसकी ओर ही उपयोग बारंबार जाता है, ये सहज जाता है। उपयोग किसी के हटाने से पलटाने से नहीं पलटता। हम जोर से कहीं खींचातानी करेंगे, अभी बाहर से हटाओ अपने में लगाओ, ये ऐसा कोई नहीं चलता वहां पर, ये सहज होता है। परंतु पर्याय की ओर से उपयोग हटाने की यह प्रक्रिया थोड़ी बाद में होगी, उसके पहले ये जो पांच पर्याय तत्व है उनका यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान कर लेना चाहिए। यथार्थ ज्ञान तो हमने लक्षण देखे, और श्रद्धान यानी कैसे, जैसे वो हेय है कि उपादेय है, इसका श्रद्धान सही होना चाहिए। अनादि से मिथ्या दृष्टि जीव आश्रय और बंध करता आया है, उसे सम्यक्त्व यानी मोक्ष मार्ग अर्थात संवर निजरा प्रकट करनी है, और इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़कर मोक्ष प्रकट करना है। यानी उसका अर्थ क्या है, संवर और निजरा कैसे एक देश प्रकट करने योग्य उपादेय, और मोक्ष तत्व पूर्ण प्रकट करने योग्य उपादेय। और जीव तत्व को कैसा कहा था, आश्रय करने योग्य उपादेय। जब जीव तत्व का आश्रय करेंगे तब संवर निजरा प्रकट होगे, तो संवर निजरा प्रकट होगे तो बस हो गया ना, उसी में संतुष्ट होकर रह जाएंगे तो नहीं, उसमें जो संतुष्ट हुआ है वो तो सम्यक्त्व से गिर जाएगा। तो अपने ही आश्रय लेते रहने से ये संवर और निजरा वो भी पर्याय है, उसका अभाव होकर मोक्ष प्रकट हो जाएगा। तो पूर्ण प्रकट किसको करना है, तो मोक्ष तत्व को। संवर निजरा वो तो रास्ता है, मार्ग में आने वाले पर्याय है। मोक्ष पर्याय प्रकट होने के पहले वाली वो अवस्था है, जीव की ही अवस्था है, परंतु वो पर्याय वाली अवस्था, पर्याय तत्व है। देखो, संवर और निजरा तत्वों को एक देश यानी आंशिक प्रकट करने योग्य उपादेय क्यों कहते हैं, इस पर हम विचार करते हैं। संवर निजरा अर्थात मोक्ष मार्ग, घर की ओर जाने वाले मार्ग पर, हमने जो दृष्टांत पहले देखा था, एक मार्ग अपने घर की ओर जाता है, उस मार्ग पर चलकर हम घर तक पहुंच गए तो भी घर में प्रवेश करने के लिए हमें उस मार्ग का त्याग करना पड़ता है। मार्ग पर रहने से घर में अंदर जा नहीं सकते, ऐसे संवर निजरा तो प्रकट हुई, परंतु उसका भी अभाव होकर मोक्ष पर्याय प्रकट हो गया। हम अभी आगे का पैराग्राफ देखते हैं। इसके अलावा और भी एक बात है कि अंतिम ध्येय यानी लक्ष्य निश्चित किए बिना जीव मार्ग में ही संतुष्ट होकर बैठ जाएगा। केवल संवर निजरा प्रकट हुई अर्थात सम्यक दर्शन प्रकट हो गया तो हो गई मेरी इति कर्तव्यता, यानी अभी मैंने करने जैसा सब कर लिया। क्या किया मैंने? अरे मैं तो समय दृष्टि हो गया। ऐसे जिसको अभिमान हो गया, पर्याय की महानता हो गई, वो तो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो जाएगा। या ऐसा पहले जो मान लेता है उसको सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। दोनों ही बात है। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो हो गया सब कुछ उसका। अरे वो तो अभी उसके गिरने के चांसेस और बढ़ गए। पहले जो जमीन पर था वो क्या गिरेगा, कहाँ गिरेगा? और जो अभी पहाड़ पर चढ़ गया है वो, हाँ वो तो गिर सकता है ना। वो तो और संभल संभल कर चलना पड़ेगा उसको। संवन निजरा यह मोक्ष का उपाय है, मोक्ष का मार्ग है। आश्रव बंध का अभाव करने से संवन निजरा प्रकट होती है। ये अभाव करना या जीव करेगा, ये सभी कथन की बातें हैं। जीव अपने में ही लीन होता है तो सहज आश्रव का अभाव होकर संवर प्रकट होता है, और जो बंधे हुए कर्म है उनका अभाव होकर अधिक निर्जरा शुरू हो जाती है। यानी ये सहज होने वाली बातें हैं। उसको तो इतना ही करना है, अपने जीव तत्व यानी स्व का आश्रय लेकर उसी में लीन होना है, उसी के ध्यान में मग्न होना है।
कोई कोई लोग सम्यक दर्शन डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद वो पहाड़ी पर जाते, गिरनार है कोई और पहाड़ पर जाके प्रतिमा लेते हैं और जाहिर करते हैं, तो वो क्या होता है?
क्या प्रतिमा लेके क्या जाहिर करते हैं?
क्या वो अभी सम्यक दर्शन हुआ है और अभी ये प्रतिमा वो गिरनार के पहाड़ पर लेंगे, तो वहां जाके महोत्सव होता है,
प्रतिज्ञा लेता है और
प्रतिमा
वो पांचवी गुणस्थान योग्य प्रतिमा के लेता है।
और बड़ा महोत्सव करते हैं। तो मैंने भरत जी को भी ये पूछा था, क्योंकि महेंद्र भाई ये जाहिर करने की कुछ चीज नहीं है।
नहीं नहीं, वो प्रतिमा लेने की कुछ जाहिर की बात नहीं होती। प्रतिमा लेते हैं जीव, जो सम्यक दृष्टि जीव हुआ है वो प्रतिमा लेगा। और ऐसे नहीं, जाहिर करने के दो अर्थ होते हैं। जिस सम्यक दर्शन हुआ है, तो सम्यक दर्शन हुआ है तो मुनियों ने भी अनेक शास्त्रों में लिखा है, ये देखो ये हम सम्यक दर्शन हम यहाँ खड़े हैं। ये कुनकुंदाचार्य भी कहते, मैं अपने अनुभव से कहूंगा, आप इसको प्रमाण अपने अनुभव से प्रमाण करना। आचार्य अमृतचंद्र भी, ये हम यहाँ खड़े हैं, मोक्ष के नेता हम यहाँ खड़े हैं। शुल्लक धर्मदास जी ने भी लिखा है कि हम ऐसे ऐसे हमको सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन हुआ कहना ये दोष नहीं है। उसका अभिप्राय क्या है? क्या वो प्रसिद्धि चाहता है? किस हेतु से वो कहता है? क्या उसके महोत्सव बनाता है? क्या उसके कोई अभी ऐसा भी हो सकता है ना, वो जीव कुछ नहीं करता, उसके भक्त पागल के जैसे कुछ करते होंगे उसके संबंध में, ऐसे भी हो सकता है। तो उसके पीछे का उसका अभिप्राय क्या है, उसके महत्व है, क्योंकि वो बताएगा नहीं तो औरों को, उसके आजू बाजू के लोगों को तो बताएगा जरूर। जैसे आपकी संपत्ति है,
खुला भी नहीं रहता जो आप लोग योग्यता वाले जीवों को,
हाँ ये अपने गुरु के पास बताएगा, अपने बच्चों को बताएगा, अपने सहादेव को बताएगा, अपने शिष्यों को बताएगा। ये बताने नहीं बताने से उसका अभिप्राय हम ऐसा नहीं कह सकते कि कितने लोग जाहिर में आए किसने नहीं भी आए, ये उसका दोष नहीं हो सकता है। परंतु ये प्रतिमाएं धारण करूंगा और मैं अभी पांचवें गुणस्थान में हूं, अभी मैं ये मुनि होते या मुनि दीक्षा होती है, वो भी जाहिर में होती है। ये हमने देखा है, कल्याणक भी, ये तो तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं। बाकी भी जो जीव दीक्षा लेते हैं तो वो भी ऐसा, जो उनको दीक्षा देने वाले आचार्य होते हैं वो महोत्सव पूर्वक समाज में, क्योंकि अन्य भी लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, दीक्षा के भाव उनके भी आते हैं, इस तरह से समाज इकट्ठा होकर श्रावकों के सामने ही ये दीक्षा आदि के प्रसंग बनते हैं, ऐसा भी होता है। यानी कोई करता है इसलिए उसको हम उसको कुछ घोषित नहीं कर सकते, समझ में आया ना? कोई जीव ऐसा है, उसने ऐसा किया इसलिए वो मिथ्या दृष्टि, ये घोषित करने वाले हम कौन है? घोषित करना या नहीं करना ये अपने आप की बात हम स्वयं जान सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा है कि नहीं वो घोषित करने वाला, तीसरा कौन है? ये समय दृष्टि हुआ है, हमने घोषित किया, अब कल हमने घोषित किया गिर गया, ये हम कौन होते उसको घोषित करने वाले? ऐसा नहीं हो सकते, वो स्वयं जीव कह सकता है। अब कहने के पीछे वो हो सकता है वो तो मायाचारी भी कर रहा हूं, और हो सकता है वो सत्य भी बोल रहा हूं। ख्याल में आता है ना ये कौन सा जीव कितनी सरलता से क्या बात है, ये भी हो ही सकता है, सत्य है वो, उसमें हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। और इसको ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं मांगते, आप प्रूफ दे दो, उसका क्या प्रूफ है, कोई जरूरत भी नहीं है। कोई समय दृष्टि हुआ है और वो कहता है मैं समय दर्शन मुझे हुआ है, आप उसके पास से ज्ञान ले लो, उपदेश दे लो, आपको दूसरा क्या देखना है उससे, समझ में आए ना। पर हम ये इसने घोषित किया ये मिथ्या दृष्टि, ऐसा हम नहीं कह सकते उसमें, ये इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो चर्चा वो क्या कहता है, शुद्धात्मा की बात बताता है कि नहीं, उसका उपदेश औरों के लिए कितना कार्यकारी है या नहीं कार्यकारी, इसकी बात हम देखें। पूर्व में कोई हुआ है, अरे ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी बातें, ऐसे हमको कहने की कुछ जरूरत नहीं है। ख्याल में आता है ना कि उसने घोषित किया इसलिए वो मिथ्या दृष्टि होगा, ये बात नहीं हो सकती। अभी ये कौन से वो गिरनार के पहाड़ पर आपने जो कुछ कहा, ये तो मेरे सुनने में नहीं आई थी, मगर होता होगा ऐसा कोई बात है। हम वो देखना है कि क्या उस जीव के निमित्त रूप से सच्चे देवगुरु शास्त्र है कि नहीं है, उसकी श्रद्धा कैसी है, उसका उपदेश में क्या आता है, तो हम खुद निर्णय कर सकते कि वो समय दृष्टि है या नहीं। अब उसके बाबत जो हमने निर्णय किया है वो हम दुनिया को क्यों बताएं, दुनिया को निर्णय करने दो। ख्याल में आए ना। देखो ऐसा भी होता है कि कोई मिथ्या दृष्टि मुनि है पर द्रव्यलिंगी सच्चा है, और समय दृष्टि को वो ख्याल में आता है कि ये मुनि सच्चा नहीं है, उसके द्रव्यलिंग है, फिर भी पूरे मुनि संघ में तो ऐसा नहीं वो डिक्लेयर करेगा कि ये मिथ्या दृष्टि, वो तो उसको आहार दान भी देगा क्योंकि उसका बाह्य आचरण यथोचित है, समय दृष्टि होते हुए भी उसको नमस्कार करेगा। अगर उसके उपदेश में कोई झूठीपन आता है तो वहां से हट जाएगा, परंतु वो डिक्लेयर नहीं करता बैठेगा कि ऐसा है वो ऐसा है, क्योंकि क्या है तो उससे क्या होगा क्योंकि द्रव्यलिंग उसका सच्चा है तो उसको वैसे यथोचित आदर करना ही चाहिए। ये ऐसी बातें बाहर की जो होती है उसमें तो व्यर्थ का वाद विवाद होता है, हमें तो मूलभूत बातें क्या है, सात तत्व का कैसा स्वरूप है, इसको देखना चाहिए। और जो सम्यक दृष्टि भी हुआ है तो पांचवें गुणस्थान में जाने के पहले वो व्रतों का अंगीकार करेगा, चौथे गुणस्थान में होते हुए वो प्रतिमाएं लेगा, बाद में उसको पांचवा गुणस्थान आएगा, तो उसके पहले व्रतों का होता है अंगीकार, और वो व्रतों का अंगीकार मुनियों के संघ में होगा या स्वयं जाके भगवान के सामने स्वयं करेगा वो अंगीकार। हो सकता है ऐसे पंचकल्याणक वगैरह होते थे, वहां भी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा सबके सामने ली जाती थी, ऐसे समूह में लेना ऐसी कोई गलत बात नहीं होती है, क्योंकि पहले से ये परंपरा ऐसी चलती आई है। दीक्षा वगैरह भी जो प्रसंग होते हैं वो तो ऐसे सबके सामने लिए जाते हैं व्रतों का अंगीकार, वो प्राइवेट में लेने चाहिए ऐसी कोई बात नहीं होती। अभी आप किस व्यक्ति को उद्देश्य से ये बात बता रहे हैं मुझे पता नहीं है। हाँ तो क्या वह व्यक्ति सचमुच समय दृष्टि है कि नहीं है, वो हमारे उनके निमित्त की तरफ देख के हम अनुमान लगा सकते हैं।
कैसा निमित्त,
कैसा निमित्त, सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त है या नहीं है, क्या उसके देव की मान्यता में कुछ गलत चल रही है, ये निर्ग्रंथ गुरु होने चाहिए, देव कैसे सच्चे वीतरागी सर्वज्ञ होने चाहिए, क्या उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं अभी यहाँ समय दर्शन नहीं हुआ है। निमित्त से कार्य नहीं होता, परंतु निमित्त की ओर से देखकर हम कार्य का अनुमान लगा सकते हैं, इसलिए निमित्तों की चर्चा आती है ना शास्त्र में। देखो अभी हम देखते हैं यहाँ पर, यानी ये हमने देखा है कि सातों तत्वों के कौन से हेय गेय उपादेय आदि हमने देखे थे, तो जैन दर्शन के अलावा अन्य सभी दर्शन में क्या कहते हैं, पुण्य भला है, पाप खोटा है, पुण्य को करो पाप को छोड़ो, कोई भी दर्शन की बात करें
सूक्त तक आता है और अटक जाता
है। हाँ, शुभ हाँ, शुद्ध की बात अन्यत्र नहीं आती
है, बल्कि बता नहीं सकते
ये तो अन्य मतियों ने भी, जो एक कालेलकर हुए थे ना, मामा काका कालेलकर कौन हुए थे महाराष्ट्र, उन्होंने भी कहा था कि जहां सबकी अहिंसा खत्म होती है वहाँ जैनों की शुरू होती है कालेलकर ने, कालेलकर
ने गांधी जी का नाम दिया।
हाँ कालेलकर के वाक्य है ये, यानी वो तो क्या कहते हैं, हिंसा मत करो अहिंसा करो। अब ये तो जैन धर्म क्या कहता है, ये पुण्य के भाव उत्पन्न होना, शुभ भाव की उत्पत्ति होना भी हिंसा है। यानी जैनियों ने अहिंसा किसको माना, पुण्य पाप की वृत्ति ही नहीं उत्पन्न होना। ये कार्य तो शरीर के कार्य उसकी बात नहीं, वृत्ति उठना है ना, वो भाव उत्पन्न होना वो भी हिंसा है कहते। क्यों? क्योंकि आत्मा में से वो च्युत हो गया, आत्मा का लक्ष्य छूट गया, इसलिए आत्मा में ही मग्न होना यही हिंसा है, अहिंसा है, और उसी को अहिंसा परमो धर्म कहा है। हम तो बाह्य हिंसा अहिंसा की बात करते हैं ना। तो जैन दर्शन छोड़कर अन्य सभी दर्शनों में पुण्य भला है, शुभ भाव करो, अशुभ भाव छोड़ो, ऐसा उपदेश है। कोई क्रिश्चियनिटी किसको कहते हो, कोई भी धर्म ले लो आप, दूसरे को मदद करो, ये अच्छा है, ये भला है, ऐसा ही कहते। परंतु शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों को छोड़कर एकमात्र शुद्ध भाव ही प्रकट करने योग्य है, वही हमारा प्रथम कर्तव्य है, पहले में पहला कर्तव्य। हम कहते हैं तब तक शुभ करना कि नहीं करना, पहला में पहला कर्तव्य वही है। ऐसा प्रतिपादन केवल जैन दर्शन में जिनेन्द्र भगवंतों ने किया है। तत्वों का अभ्यास और यथार्थ श्रद्धान करते समय शुभ भाव छोड़ने लायक है, हे यह है, ऐसा योग्य श्रद्धान करना जरूरी है। शुभ भला है ऐसी विपरीत मान्यता की जड़ इतनी गहराई तक पहुंची हुई है, किसी न किसी बहाने से शुभ भला है इस मान्यता को जीव कायम रखता है। कैसे? अहो, शुद्ध में जाने के लिए प्रथम शुभ में आना ही चाहिए ना, सबके प्रश्न ऐसे ही है ना। समय दर्शन नहीं होता तो शुभ करना चाहिए ना, जोर कहाँ आया? शुभ करने पर। ऐसे कहकर चाहिए शब्द पर, शब्द का वजन शुभ पर डालकर वह जीव शुभ को महत्व देकर, उसकी मान्यता में शुभ का महत्व है, उसकी महत्व है, आश्रव बंध को हेय न मानकर उपादेय मानता है, और तत्व संबंधी विपरीत मान्यता दृढ़ करके मिथ्यात्व का ही पोषण करता है। तो कोई कहेगा तो शुभ करना कि नहीं करना, करने नहीं करने की बात कहाँ है, यहाँ मानने की बात है। ये जीव समझता ही नहीं, मान्यता में लेना है वो करने पर उतर आता है या छोड़ने पर उतर आता है। जब तक शुद्ध भाव प्रकट नहीं होता, अर्थात समय दर्शन नहीं होता, शुद्धोपयोग नहीं होता, तब तक जीव को शुभ में से अशुभ और अशुभ में से शुभ भाव ऐसा सदा ही चलता रहता है। कोई पूछेगा हमको शुभ करना चाहिए ना, ऐसे कहने वाले को भी शुभ निरंतर नहीं रहेगा, उसकी लिमिट है अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त के बाद उपयोग जरूर पलटेगा और अशुभ में जाएगा। अशुभ करने वाले का भी बीच में शुभ भाव होगा ही, भले वो कम दर्जे का होगा, अधिक होगा, कैसा भी होगा, परंतु शुभ अशुभ शुभ अशुभ एवरी अंतर्मूर्त पलटता है। अंतर्मूर्त है ना, मूर्त के अंदर, वो अंतर्मूर्त छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। छोटे में छोटा अंतर्मूर्त आपने सुना है ना, आवली प्लस एक समय, और बड़े से बड़ा अंतर्मूर्त 48 मिनट में एक समय कम, इसके बीच वाले मध्यम भेद अनेक होंगे। तो कोई भी शुभ भाव करता रहे तो भाव जो है वो सतत अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं रहेगा। अशुभ में भी जाएगा तो भी अंतर्मूर्त से ज्यादा अशुभ नहीं रहेगा, वो शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ चलता रहेगा। और ये शुभ और अशुभ तो निगोद में भी होता है, उनमें भी अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में बात पलटते हैं। क्योंकि जो निगोद में जन्म लेता है वो किस कारण लेता है? अशुभ भाव के कारण। और जो निगोद में से निकलकर मनुष्य या पंचेंद्रिय तिर्यंच होता है कोई, को क्यों होता होगा? शुभ भाव से। तो वहां शुभ भाव चलता है तभी तो होगा कि नहीं होगा? उनके योग्य जिसको हम विशुद्धि कहते हैं, वहां विशुद्धि और संकलेश, विशुद्धि और संकलेश वहां भी चलते हैं। वो सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो सहज है जीव का, ऐसा ही उसके सहज वो योग्यता ऐसी होती है, कंटिन्यूस कोई एक भाव नहीं करता। तो हमें ये शुभ का महत्व आता है यहां पर, क्योंकि हम कर सकते हैं, करना चाहिए, ऐसी मान्यता में उसका अभी वो पड़ा है, उसकी वही मान्यता की भूल चलती है। देखो आगे की बात, इस तरह जब अशुभ भाव पलट कर शुभ भाव अपने आप आते ही है, तब शुभ में आना ही चाहिए कहकर जीव शुभ भाव में ही संतुष्ट होने की मान्यता कायम रखता है। यानी समझ में है? मान्यता कायम है, उसकी आश्रय यानी शुभ राग करने लायक है, करना ही चाहिए, ऐसी मान्यता है। और क्या मानता है? राग करते करते मैं वीतराग बनूंगा। इसीलिए किसी ने मुनि दीक्षा भी अंगीकार की। तो देखो, हमने तो ये किया ना, अभी इसको तो वो फल आने वाला ही है मोक्ष का, ऐसा कहते। तो ये शुभ राग करते करते मैं वीतराग बन जाऊंगा, ऐसी मान्यता है। यानी आश्रय करने से संवर होगा, ये मानता है। शुभ भाव करते करते शुद्ध भाव प्रकट होगा, ऐसी मान्यता है। ये सभी मान्यताएं विपरीत है। और इसको नाम देता है, शास्त्र के सूत्र हमें बताता है। देखो यहाँ लिखा है ना, तपसा निर्जरा। किसको तप मानता है? ये बाह्य उपवास किया वो तप हुआ। अरे तप का अर्थ होता है अंतरंग में स्थिरता, वही तप है। जब ऐसी स्थिरता होगी, वीतरागता होगी, तो उसने जो बाह्य में उसके शुभ राग है उस पर आरोप आता है, उपचार आता है कि ये भी तप है। जैसे शरीर तो जड़ है, परंतु हम जब तक शरीर में रह रहे हैं, जीव जब तक शरीर में है, तब तक हम कहेंगे ना ये जीव है। शरीर की ओर देखकर हम कहते हैं ये जीव है। वनस्पति को कहते हैं हम ये जीव है। वो शरीर तो जीव नहीं है, वो तो जड़ है। और हम ये लकड़े को कहते हैं अजीव है। क्यों? अभी इसके साथ जीव नहीं रहता। पहले इसके साथ था तो हम कहते थे ये जीव है, और जब जीव निकल गया, सूखी लकड़ी होगी, तो हम कहेंगे ये अजीव है। ख्याल है ना, वो शरीर ना जीव था कभी, फिर भी उपचार किया। ऐसे जो जिसके वीतरागता है, उसके जो उपवास आदि जो अन्य तप होते हैं, बाह्य तप, उसको तपक कह दिया जाता है। वो तप है ही नहीं है, और उससे निर्जरा नहीं होती, उससे तो बंद होता है। पर ये तो भोला जीव है ना, कुछ करना चाहता है और मानता भी है कि ये करने से मुझे तप हो रहा है, मुझे निर्जरा हो रही है, ऐसे मानता है। और ऐसे उन मान्यता को पुष्टि देने वाले भी मिल जाते हैं उसके। देखो, यह विपरीत श्रद्धा में है, यह विपरीतता श्रद्धा में है। क्या कहते हैं? ये जो मान्यता में विपरीतपना चल रहा है, उस कारण उसके अनुसार होने वाला ज्ञान और आचरण भी विपरीत हो रहे हैं। मिथ्या मान्यता के कारण ज्ञान को भी मिथ्या ज्ञान और चारित्र को भी मिथ्या चारित्र कहते हैं। दोनों ही मिथ्या हो रहे हैं, विपरीत हो रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति आचरण सुधारने की चेष्टा एवं प्रयत्न करता है, परंतु मान्यता विपरीत रखकर ज्ञान और आचरण तीनों काल में कभी भी सम्यक नहीं हो सकते। तो पहले में पहले सुधारना क्या है? तो मान्यता। ये क्या सुधारना चाहता है? आचरण। मान्यता विपरीत रख के आचरण सुधरने से कोई फायदा नहीं होता। सच देखा जाए तो सम्यक दर्शन का मार्ग बहुत सरल है, सहज है। बस सच्चे देवगुरु शास्त्र का यथार्थ श्रद्धान तथा सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। असल में ये दोनों एक ही है। वो किस तरह है तो हम देखेंगे। मोक्ष तत्व के श्रद्धान में सच्चे देव का श्रद्धान अंतर्भूत है। क्या कहा? मोक्ष तत्व का श्रद्धान यानी मोक्ष जो पर्याय है वो कैसी है? अनंत सुखमय है, वहां अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान आदि जो बातें है। और देव में क्या है, परमात्मा क्या है? तो जिनके अनंत ज्ञान आदि गुण प्रकट हुए उनको हम भगवान कहते हैं। तो मोक्ष का श्रद्धान कहो या देव का श्रद्धान कहो, एक ही है। अब कहते हैं, संवर निजरा तत्व के श्रद्धान में सच्चे गुरु का श्रद्धान अंतर्भूत है। संवर निर्जरा का अर्थ गुरु नहीं है, परंतु गुरु का स्वरूप, और यहां संवर निर्जरा का स्वरूप। तो संवर निर्जरा का सही श्रद्धान और गुरु का, सच्चे गुरु का सही श्रद्धान एक ही है। क्योंकि संवर निर्जरा किसके प्रकट होती है? समय दृष्टि के होती है। वो अधिक मात्रा में किसके होती है? तो मुनियों के होती है। तो मुनियों का स्वरूप कैसा है? तो जो अंतर्बाह्य निर्ग्रंथ है, परिग्रह से रहित है, और भावलिंग उनके अंतरंग इतनी वितरकता है, उसको हम मुनि कहेंगे। और संवर निजरा में क्या है, इतने कर्म प्रकृतियों का बंध रुक गया है, उनका छठा सातवां गुण स्थान है, वो सब उसमें आएगा। तो उसको हम प्रचुरता से उन्हीं की बात है ना संवर निजरा में। और सातों तत्वों के श्रद्धान यथार्थ श्रद्धान में सच्चे शास्त्र का श्रद्धान अंतर्भूत है। क्यों, ये सात तत्व कहाँ कहे है, शास्त्र में कहा है। तो सात तत्वों का श्रद्धान कहो या शास्त्र का श्रद्धान कहो, एक ही बात है, क्योंकि शास्त्र में ही इनका स्वरूप बताया है। क्योंकि शास्त्रों का प्रयोजन ही यह है कि सात तत्वों का स्वरूप बताकर, भेद विज्ञान की कला बताकर, ये स्वरूप तो बताएंगे, भेद विज्ञान कैसा करना ये भी शास्त्र में बताएंगे, और वितरकता का उपदेश देना। देखो हम देखते हमेशा कहते चारों ही अनुयोगों का सार वितरकता है, ये चारों ही अनुयोगों का उपदेश क्यों दिया है, वितरकता के लिए। उसमें से वितरकता कैसे हासिल करना, ये कला है, ये हम उसे जानेंगे और उस उपदेश के द्वारा हम स्वयं वितरकता प्राप्त कर सकते हैं। आज तक आश्रय बंध को हेय न मानकर उपादेय माना, यही हमारी बड़ी भारी भूल हो गई। जीव भूल सुधारने के लिए क्या करता है, पाप छोड़कर पुण्य में लग जाता है और मानता भी है, अरे हम बहुत पापी थे, अभी हम थोड़े बड़े सुधर गए। परंतु ये आश्रय है, ऐसे मान्यता सही नहीं करता। ये भी छोड़कर मुझे शुद्ध भाव प्रकट करने लायक है, होगा तभी होगा, परंतु ये छोड़ने लायक है और शुद्ध भाव प्रकट करने लायक है ये पहले निश्चित नहीं करता। देखो हमने आश्रवादी पर्याय तत्वों के प्रत्येक के दो दो भेद देखे थे, द्रव्य और भाव, आपको याद है ना, द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष, और भाव में भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष। तो ये सारे जहां जहां द्रव्य शब्द लगाए वो किसकी अवस्था है, कर्म की, और जो भाव शब्द लगाए वो जीव की अवस्था है। देखो तो कर्म कारमाण वर्गणा से बनता है, कारमाण वर्गणा पुद्गल है और पुद्गल परद्रव्य है, वो भी परद्रव्य में आएगा ना, वो भी पुद्गल है। अजीव तत्व का अभ्यास करते हुए हमने सभी परद्रव्यों को गेय तत्व में डाल दिया था, परंतु वैसा न मानकर मुझे फलाना कर्म का नाश करना है। देखो ये भी अभी उसकी भूल चल रही है, तत्व संबंधी कर्म अजीव तत्व है, भले हम उसके द्रव्य संवर वगैरह कहेंगे, परंतु वो मूल में मूल क्या है, पुद्गल है, अजीव तत्व है। तो हमने क्या माना, कर्म की अवस्था मैं पलटा सकता हूं, मैं मुझे कर्म का नाश करना है, दर्शन मोहिनी कर्म मुझे सम्यक तो होने नहीं देता, नहीं तो मैं कब का समय दर्शन प्राप्त कर लेता। क्या माना, वो कर्म ने मुझे अटकाया है, मैं कर्म का करता हूं, कर्म मेरे भावों का करता हरता है, ऐसा मानना यह सब मान्यता की विपरीतता है। अनेक लोग आरोप लगाते कि आप आश्रय बंध को हेय बताते हैं, शुभ भाव हेय ऐसा कथन करते हैं, उसे सुनकर जीव की दशा करेला ऊपर नीम चढ़ा। मराठी में कहते आधी च मरकट तशा तही मध्य प्याला, इन पहले बंदर है और ऊपर उसको मध्य पिला दिया, तो ऐसे जीव स्वच्छंदी हो जाएंगे। परंतु उनका यह भय निराधार है, क्योंकि शुभ भला है, करते रहने जैसा है, यह मान्यता छुड़ानी है। उसका शुभ भाव नहीं कोई छुड़ाते, छुड़ा सकते ही नहीं है। शुभ छोड़ने का कहां उपदेश है, यह जो स्वाध्याय चल रहा है, मान्यता के विपरीतता का विवेचन चल रहा है, वह शुभ भाव है या अशुभ भाव, यह भी शुभ भाव ही है।
दिमाग में नहीं बैठता है लोगों का, जो मान्यता में बदलना है
यही लोग सोचते नहीं,
वो ऐसे सोचते आप उनके छुड़ाते हो।
हाँ। तो देखते यह भी शुभ राग है, और शुभ राग करने के लिए किसी के उपदेश की जरूरत भी कहाँ है। सूक्ष्म एकेंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक के चारों गति के जीवों का भी शुभ अशुभ भावों का रहट तो सदा घूम ही रहा है। रहट क्यों कहा, शुभ के बाद अशुभ, अशुभ के बाद शुभ, शुभ के बाद ये तो उनका चल ही रहा है, चारों ही गतियों के, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय के सबके। तो ये तो हमने लड़की का भी उदाहरण लिया था कि जब जिस दिन पैदा होती तभी हम उसको पराया धन समझ लेते हैं, फिर भी उसको सब कुछ उसके काबिल योग्य बना लेते हैं। देखो आश्रव के बारे में भी ऐसा ही है, उसे हेय माना, श्रद्धा में त्यागने योग्य माना, तो भी जब तक आश्रव छूटकर शुद्ध भाव प्रकट नहीं होता तब तक अधिक अधिक उच्च प्रकार के शुभ भाव आते ही रहते हैं। शुद्ध भाव प्रकट होने पर भी पुनः पुनः आश्रव होते हैं। शुद्ध भाव एक बार प्रकट हुआ तो भी अभी आश्रव भी हो गए, बंद भी होगा, संवर भी होगा, निर्जरा भी होगा। हाँ, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी टल गया है, फिर भी तीन कषाय बाकी है, उसका आश्रव बंध भी है वहां पर, और ऊपर के गुणस्थानों में जाएगा तो वो भी कम होगा, तो एक एक कषाय चौकड़ी कम होती चली जाएगी, तो शुद्धि बढ़ती जाएगी और आश्रव पूर्ण नहीं छूटेंगे। फिर भी कब मैं मेरे शुद्ध स्वभाव में जाऊं, ऐसी खटक निरंतर रहेगी और एक समय ऐसा आएगा कि पूर्ण रूप से अंतर में ही लीन होगे और केवल ज्ञान प्रकट होगा, मोक्ष अवस्था प्रकट होगी और जीव की पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट होगी। बाकी की बात हम कल देखते हैं, अभी यहाँ समय हो गया अपना। लो 2400 भगवान की।